लंच का समय था। मार्था, नीता, कृपेकर, सलीम, सुभाष, अंकिता ने अपने अपने खाने के डिब्बे खोले ही थे कि तभी अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। सभी के चेहरों पर झुंझलाहट तोड़ गई। तिलक फोन के करीब वाली मेज के पास ही बैठा कुछ लिख रहा था। आज खाने के बारे में उसने अनिच्छा जाहिर की थी। लोगों ने ज्यादा दबाव भी नहीं डाला। शायद वह अंकिता के संग पिछले दिन हुई मुठभेड़ की रंजिश के चलते उनमें सम्मिलित नहीं हो रहा था। लोगों का अनुमान था कि वही फोन उठा लेगा, मगर वह काम में कुछ इस कदर दत्तचित्त होने का बहाना बना कागजों में गर्दन गड़ाए बैठा रहा जैसे लगातार बजती फोन की घंटी की आवाज उसने सुनी ही न हो। आखिरकार खाने के डिब्बे की ढक्कन में हाथ का कौर पटक कृपेकर फोन की ओर लपका। खींच भरी हेलो के होते ही अचानक कृपेकर की विस्मय और उत्तेजना से पूर्ण क्या सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सभी ने देखा कि कान से चोगा लगाए खड़े कृपेकर का चेहरा उस ओर की बात सुनते हुए उत्तर उत्तर सफेद पड़ता जा रहा है। उनके हृदय आशंका से भर उठे। सलीम से सब्र न हुआ, वह उठकर कृपेकर के निकट जा पहुंचा। आहिस्ता से उसने जिज्ञासा के लिए कृपेकर का कंधा छुआ, लेकिन कृपेकर को जैसे उसके स्पर्श का भान ही नहीं हुआ। जैसे उसकी समस्त चेतना निचुड़ कर टेलीफोन के चोंगे में समा गई थी। अच्छा अच्छा ओह, के काफी देर बाद उसने चोंगा रखा और प्रश्नों की बौछार झेलता हुआ अपने ढीले हुए शरीर को लगभग ढोता उस मेज की ओर बढ़ा जहाँ अखबार बिछाए डिब्बे खोले बैठे सभी आशंकित नजरों से उसकी बाट जो रहे थे। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, कई अधीर स्वरों ने उसे झिझोड़ा। तिलक भी उठकर उनके समीप आ खड़ा हुआ। बहुत दर्दनाक खबर है, मेहता की बीवी ने कल आधी रात अपने को फांसी लगा ली। क्या क्या कह रहे हो, अविश्वास से सभी की आंखें फट पड़ी। अभी लाश पोस्टमार्टम के लिए सेंट जॉर्ज अस्पताल गई हुई है, 2:30 के करीब वापस मिल जाने की उम्मीद है। लाश घर नहीं ले जाएंगे, अस्पताल से सीधा चरनी रोड वाले विद्युत शवदाह गृह में ले जाकर जलाएंगे। फोन किसका था, मेहता के मामा के लड़के जयंत कापड़िया का, बेचारा घंटे भर से अपनी एजेंसी का नंबर लगा रहा है, कृपेकर ने उदास स्वर में बात पूरी की। सुनकर सभी के जर्द चेहरों पर अबाक पीड़ा मंडराने लगी। कृपेकर ही संयत हो बोला, बोलो क्या करना है। तिलक ने कलाई मोड़कर घड़ी पर निगाह डाली, 1:15 के करीब हो रहा है और जयंत ने बताया है कि 2:30 तक लाश पोस्टमार्टम होकर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि हम अगर 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकल दें तो 1:45 तक अस्पताल हर हालत में पहुँच जाएंगे। वैसे यहाँ से शवदाह गृह भी जाया जा सकता है, लेकिन मुझे तो उचित यही लग रहा है कि हम सीधे अस्पताल ही पहुँचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 टैक्सियाँ कर लेते हैं, शेट्टी से कह देते हैं वह बड़े साहब को भी खबर कर दे। नीता भोजन का डिब्बा बंद करने लगी। तिलक ठीक कर रहा है, उठते हैं। भाई मेरा एक और सुझाव है, सुभाष ने खुले भोजन पर दृष्टि थमाकर कहा। मेरे को लगता है अपन खाना खाकर निकले तो अच्छा है। मैयत का मामला है, पता नहीं कितना समय लगे। अभी जो हुआ वो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हाँ यार ठीक कह रहा है, पता नहीं कैसी भागा दौड़ी पड़ जाए। सलीम ने सुहास के सुझाव का समर्थन किया। मेहता की हालत सोचकर अपने गले से खाना नहीं उतरेगा। बिना किसी उहापोह के कृपेकर अपना डिब्बा बंद करने लगा। सभी ने उसका अनुकरण किया। तिलक जाकर शेट्टी को खबर कराया। उससे पता चला कि बड़े साहब कब के लंच पर जा चुके हैं और अब उनके लौट कर आने की उम्मीद कम है। शेट्टी ने पैसों की जरूरत पर जिज्ञासा की। तिलक ने कहा कि वैसे मेहता के परिवार वाले इसी शहर में हैं और उसकी जानकारी के मुताबिक खासे संपन्न लोग हैं, जरूरत भर का इंतजाम उन्होंने किया ही होगा, लेकिन कुछ पैसे प्रबंध करके अपने साथ लिए चलने में कोई हर्ज नहीं। कह नहीं सकते विपत्ति के समय कब कैसी आवश्यकता पड़ जाए, वहां पहुंचकर मेहता से पूछना भी हमारा फर्ज है। नीता ने चपरासी चौधरी को फौरन 2 टक्सियां ले आने का आदेश दिया। ठीक 2.5-3 मिनट के भीतर वे सब टैक्सी में बैठ रहे थे। अस्पताल के प्रांगण में शव घर के सामने पूरा जमघट लगा हुआ था। उपस्थितों के चेहरों पर शोक के साथ साथ इस कारुणिक घटना से उपजने वाली जटिलताओं की चिंता भी छलछला रही थी। मेहता गुमसुम बिजली के खंभे के सहारे टिका खड़ा था, अस्त व्यस्त दीर्घ कारावास से छूटे हुए कैदी सदृश। बाहरी दुनिया के लिए आंखों में शून्य भरे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आगे बढ़कर उसके सामने हो जाए। उसे दिलासा दे, साहस से काम लेने को प्रेरित करे कि होनी को कौन टाल सकता है। हिम्मत सलीम ने ही की, उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर आत्मीयता से हाथ रख दिया। मेहता की सूखी आंखें सलीम की ओर घूमी, अपने इर्द गिर्द खड़े समस्त सहकर्मियों की ओर देखा, फिर अचानक वह कुल्हाड़ी खाए वृक्ष की तरह सलीम के कंधे पर टूट पड़ा। किसी से कुछ कहा नहीं गया। कुछ पलों के बाद स्वयं ही अपने को समेटता हुआ मेहता सलीम के कंधे से अलग हो पुनः खंभे से टिक गया। अंकिता का हृदय विह्वल हो आया, मन किया कि आगे बढ़कर मेहता की हथेलियां बेझिझक अपने अजूरी में भरकर थपथपा दे। संभवतः एक वही है जो अनुमान लगा सकती है कि मेहता इस समय किस दोहरी मानसिक यंत्रणा से जूझ रहा है। कितने धैर्य से वह अपने हिस्से की कुरूप कड़वी ठंडी जिंदगी के प्रहार पर प्रहार सहे जा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। कितनी कष्टप्रद और मर्मांतक होती है अपने को बलात् संयमित रखने की चेष्टा। अलबत्ता उस पर दृष्टि पड़ते ही मेहता अपने आवेग को जब्त नहीं कर पाया। उसकी हथेलियों को अपने चेहरे से जकड़ फफक कर रो पड़ा। वह सूखी आंखें लिए गले के भीतर उमड़ते ज्वार को घुटकती रही। कुछ भी नहीं कहा गया। कितना कुछ कहना चाहती है, वाक शक्ति जैसे हथेलियों के नम शीतल स्पर्श में परिवर्तित हो आई और मेहता के दग्ध अंतर मन को अकेले ही धीरज बधाने लगी। जो कुछ तुम्हारे वश में था तुम करते रहे, जो नहीं था उसके लिए धैर्य करो। तिलक ने सांत्वना से उसकी पीठ थपथपाई। कमजोर बनने से काम कैसे चलेगा मेहता, कैसे हुआ यह सब? तिलक ने यही सोचकर उसकी वेदना के अंगारों पर फूंक मारी। जितनी तेज आंच वे धसकेंगे उतनी ही तेजी से उनकी आंच राख होगी। रूधे कंठ से रुक रुक कर मेहता ने बताया। रात को जब वह पेशाब करने के लिए उठा, फ्रिज का दरवाजा खुला देख उसे अचंभा हुआ। उसने सोचा शायद पानी वानी पीने के लिए कोकिला ने फ्रिज खोला होगा और नींद की बोझिलता में उसे बंद करना भूल गई होगी। फ्रिज का दरवाजा बंद कर यूं ही कमरे की बत्ती का स्विच दबा दिया, लेकिन जो विभत्स दृश्य उसने देखा भय से उसकी आंखें फट पड़ी। उसकी पत्नी कोकिला छत के पंखे से लटकी हुई थी। मेहता की नींद न उठते शायद इस ख्याल से कोकिला ने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ उसकी मध्यम रोशनी के सहारे अपने इरादे को कार्यान्वित किया। एक छोटी सी चिट्ठी तकिए के नीचे लिख कर रख गई, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जीवन के प्रति पैदा हुई वितृष्णा और विरक्ति को जिम्मेदार ठहराया। यह हत्या का मामला भी बनाया जा सकता था, क्योंकि उसके फूफा सहायक पुलिस कमिश्नर हैं। उन्होंने अनावश्यक तहकीकात और भागा दौड़ी से बचने में उसकी मदद की और कोकिला की चिट्ठी को आधार बनाकर इस घटना को पूर्णतः आत्महत्या का मामला दर्ज किया। इसीलिए केस अतिरिक्त उलझनों से बच गया, वरना मेहता के हाथों में हथकड़ियां होती। पत्नी के परिवार वाले भी चाहते तो केस बिगाड़ सकते थे, मगर उन लोगों ने समझदारी और सहयोग भरा रवैया अपनाया कि बेटी तो हमारे हाथ से गई, अब आप लोगों को दोष देने से भला क्या फायदा। लाश 8-10 मिनट के भीतर मिल जाएगी, पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अन्य कारण नहीं निकला। मेहता की शोक संतप्त माँ ने उन्हें बताया कि रात में बहू के व्यवहार से उन्हें राई रत्ती संदेह नहीं हुआ कि उस निर्मम ने अपने मौत का षड्यंत्र स्वयं रच रखा है। हमेशा की तरह सहज भाव से उसने पूरे परिवार को खाना खिलाने में उनका हाथ बटाया। सुबह के लिए दूध की बोतलें और पैसा निकाल कर खाने की मेज पर रखा। बोई से रसोई साफ करवाई, सारे कामों में निपट कर सोने चली गई। क्या पता था कि रात बीतने भी नहीं पाएगी और हम बहू का मरा मुंह देखेंगे। मैं तो अब उस घर में नहीं रहूंगी, बेच दूंगी, नहीं तो निरंतर आभास होता रहेगा कि अपने घर में नहीं फांसी घर में रह रही हूँ। 24 घंटे बहू घूमती रहेगी आंखों के सामने। परसों से नवरात्र शुरू हो रही है, साल भर का हमारा त्यौहार बिगड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गया। कितने उत्साह से गरबा में सम्मिलित होती थी, पूरी पूरी रात जागती रहती। मेहता की गरबा में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी, शामिल ही नहीं होता था। खूब लड़ती थी इससे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ आप नहीं उतरते अपने माले से। अब सब खत्म, वह दुख और निराशा से कातर हो आई। आगे बढ़कर नीता ने उन्हें संभाला, तभी अस्पताल के बॉय ने आकर सूचना दी कि लाश तैयार है, मेहता को जरा हस्ताक्षर करने होंगे, एम्बुलेंस का पैसा भी भरना होगा। लाश स्टेशन पर आई तो मेहता की सांस पछाड़ खाती मृत बेटी की देह पर ढेर हो गई। लोगों ने बड़ी कोशिश करके उन्हें संभाला और खींच खांच कर शव से अलग किया। एम्बुलेंस में 6-7 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ पाए, बाकी लोगों ने टैक्सी से जाना तय किया। कुछ एक लोग अपनी गाड़ी लेकर आए थे, वे अपने संबंधियों के साथ निकल गए। अंकिता ने कहा कि वह श्मशान नहीं जाएगी, उनके यहाँ स्त्रियाँ शवदाह स्थल पर नहीं जाया करतीं। खैर, इस रूढ़ में उसका विश्वास नहीं, लेकिन सच तो यह है कि वह दाह संस्कार प्रत्यक्ष देख पाने का साहस नहीं जुटा पाएगी। नीता की इच्छा थी, लेकिन पुरुष सहकर्मियों ने भी यही सुझाव दिया कि बेहतर यही होगा कि वे घर लौट जाएं, साथ चलकर भी क्या होगा। उनकी दुविधा देख मेहता की मां ने भी निकट आकर स्पष्ट किया कि उनकी रिश्तेदार महिलाएं भी यहां से सीधे घर जा रही हैं, वहीं से पुरुषों की वापसी की प्रतीक्षा करेंगी, तुम लोग भी जाओ। लिली, नीता, मार्था और अंकिता स्टेशन की ओर चल दीं। मार्था और लिली कुछ देर जाकर टैक्सी से उतर गईं, वे सीधे घर न जाकर किसी से मिलते हुए जाना चाह रही थीं। नीता ने सुझाव दिया कि क्यों न अंकिता उसके घर चली चले, वही दोनों स्नान शुद्ध भी कर लेंगे और संग रहने से थोड़ा मूड भी ठीक रहेगा। नीता का प्रस्ताव उसे रुचा। वाकई मन बड़ा अस्थिर है, मगर आज वह सीधा घर इसलिए जाना चाहती है कि जब तक वह घर नहीं पहुंचेगी, पर अब वहां से नहीं टलने वाला। घर की बात याद आते ही उद्वेलित मन स्थिति के बावजूद वह अपने कमरे की दुर्वस्था की कल्पना कर बेचैन हो आई। 4 बच्चे हैं परब के, उनमें से 2 बच्चे छोटे हैं। छोटे वाले ही उसे खूब ऊधम बाज लगे, उसकी उपस्थिति से बेखौफ कैसे उन्होंने पलंग पर कूदा कादी शुरू कर दी थी। मन में आया था परब से निसंकोच कह दे कि वह बच्चों को उसके पलंग पर बिल्कुल न चढ़ने दे, उसे गंदगी से सख्त चिढ़ है, लेकिन कह सकने का साहस नहीं जुटा पाई, यही सोचकर कि वे मकान मालिक हैं और वह उनकी किरायेदार। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता बहुत मायने रखती है। मान लो वह हिम्मत कर कह ही डालती तो क्या गारंटी थी कि परब की पत्नी सावधानी बरतेगी ही। अगर उसकी पत्नी निराश होने के लिए उसके ही बिस्तर का इस्तेमाल किया होगा तो समझ लो बिस्तर का सत्यानाश। बच्चों के मूत की हीक भगाने के लिए गद्दों को धूप दिखानी होगी, इसके लिए उसे अपनी पड़ोसन की चिरौरी करनी होगी। पड़ोसन की बालकनी लंबी चौड़ी ही नहीं है, धूप भी वहां खुलकर आती है। पड़ोसन के इस छोटे से एहसान के पीछे उसे हफ्तों की बची खुची सब्जी, कस्टर्ड या आइसक्रीम अपने फ्रिज में रखनी होगी। बस इसी चक्कर से वह घबराती है, मगर चिंता करने से समस्या का निवारण होने से रहा। अब तो जितना कबाड़ा होना था हो चुका होगा। इस वक्त समस्या यह है कि नीता के आग्रह को कैसे टाले कि नीता उसके इनकार को अन्यथा न ले। कोई ठोस कारण गढ़ना होगा। मकान की समस्या से उसे अवगत इसलिए नहीं कराना चाहती कि उसे पूरा पुराण खोलकर सुनाना होगा और यह भी बताना होगा कि वह उसके यहाँ रहने क्यों नहीं आई और क्यों उसने रात हरिंद्र के यहाँ गुजारी। बच्चे को देखने जाने का तर्क नीता के गले नहीं उतरेगा। हो सकता है उसके इस आचरण को वह मैथ्यू वाले प्रकरण की प्रतिक्रिया मान ले, जो वह नहीं चाहती। बीती बातें उसे महीनों उद्विग्न बनाए रखती हैं, किंतु उन पर विसूरते रहने से वह बचती है, बचना चाहती है। उफ, घर, बेघर लोगों पर घर ज्यादा ही सवार रहता है शायद, वरना अवसाद में आकंठ डूबा हुआ मन कई पटरियों पर दौड़ता। उसने कपड़ों की दिक्कत जाहिर की। नीता ने दोबारा आग्रह नहीं किया, समझ गई कि इस वक्त अंकिता के साथ चलने की इच्छा नहीं है, वरना कई दफे वह ज्यों की त्यों उसके संग चल पड़ी है, घर रही है और उसके कपड़ों का इस्तेमाल बेझिझक कर चुकी है। मन का न होना स्वाभाविक है, मेहता उसका गहरा मित्र है। मेहता पर टूटी आकस्मिक विपदा से वह विचलित हो उठी है। हो सकता है उचाट मानसिकता में वह नितांत एकांत में रहना चाहती हो। स्टेशन पहुंचकर नीता ने ठंडा पी लेने का आग्रह किया। उसने सूचना पट्ट की ओर उंगली उठा दी, बोली 2:45 की यह विरार लोकल छूट गई तो फिर लगभग 10 मिनट अगली गाड़ी की प्रतीक्षा करनी होगी। हड़बड़ी क्या है, प्रतीक्षा कर लेंगे, नीता ने उसके सूखे उतरे चेहरे पर दृष्टि गड़ाई। जवाब में वह मौन हो आई। नीता की हर बात काटना उचित नहीं, सीधे घर जाना है तो 15-20 मिनट में आसमान नहीं फट पड़ रहा। नीता के सदैव स्निग्ध दिखाई देने वाले चेहरे पर खींचे तनाव से स्पष्ट जाहिर है कि वह इस समय अकेले होने की कल्पना मात्र से घबरा रही है। मानसिक अस्वस्थता वह भी अनुभव कर रही है और अगर नीता के संग जाने की रत्ती भर भी गुंजाइश होती वह निश्चिंत ही चल देती। वे प्लेटफार्म के बीचों बीच स्थित एक टी स्टॉल पर आकर खड़े हुए। मुखाग्नि मेहता को ही देनी पड़ेगी और कपाल क्रिया भी उसे ही करनी होगी, देनी होती अगर वे लाश को लकड़ियों से जलाते। विद्युत शवदाहगृह में मिनटों में लाश जलकर भस्म हो जाती है, यह बढ़िया तरीका है। वह जैसे अपने आप से बुदबुदाई। माँ बताती है कि डैडी की कपाल क्रिया बड़ी हृदय विदारक थी, सब जल गया मगर भाई बड़ी कोशिश के बाद कपाल फोड़ पाए। सोच नहीं पाए कि प्रतिक्रिया में क्या कहे। मैं तो वसीयत कर जाऊंगी कि मरने के बाद मुझे विद्युत शवदाह गृह में ही जलाया जाए। मरने के बाद की छीछा लेदर उफ कम भयानक नहीं होती। नहीं, उसने करुण दृश्य से नीता की ओर देखा। नीता का चेहरा एक अनजानी दहशत से जर्द हो किसी शून्य में टंगा हुआ प्रतीत हुआ। किसी के मरने पर हम भी जैसे मृत्यु से साक्षात्कार करने लगते हैं। कोकिला ने ऐसी विभस्त मौत क्यों चुनी? उनके बीच मेहता की पत्नी को लेकर यह पहली चर्चा थी। कुछ खा खूकर सो सकती थी, यंत्रणा से बच जाती। कुछ लोग मौत के बहाने दंड देना चाहते हैं स्वयं को। उनके लिए मौत कठिन हो या आसान क्या मायने रखती है? आपने अपने को या अपने लोगों को? शायद अपने को। वह जीना नहीं चाहती थी। जीना तो बहुतों के हिस्से में नहीं होता अंकु, फिर भी वे लड़ना नहीं छोड़ते। हाँ, अगर जीने की शर्तें और सीमाएं हों। नीता उसकी बात का इशारा समझ भी नहीं सकती। वह एक ऐसे अंतर्द्वंद से गुजर रही है जहाँ खेत की समतल भूमि में प्रश्न नुकीली ठूठों की भांत पग को लहलुहान करते सिर उठाए खड़े हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अपने लिए इतनी अमानवीय मौत चुना अपनी आत्मिक ऊर्जा के चूक जाने के परिणाम स्वरूप अपनाया गया विकल्प नहीं है, बल्कि संबद्ध लोगों से प्रतिकार लेने का क्रूरतम प्रयास है? क्या मात्र चंद शब्द लिख देने भर से कि मैं अपनी मौत के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, वह परोक्ष रूप से उन्हें पूरा जिम्मेदार नहीं ठहरा गई? क्या उनके सिर पर उसकी विकृत लाश प्रतिपल नहीं झूलती रहेगी, उन्हें अपराध बोध की मानसिकता से नहीं ग्रसित रखेगी? क्या नीता को कोई अनुमान है? हो भी तो वह उस अनुमान को कोई साक्ष्य नहीं देगी। मुझे नहीं मालूम कि उसने किन कारणों से अपने लिए ऐसी मौत चुनी, मगर पता नहीं क्यों उसके इस निर्णय के प्रति मैं तनिक भी उद्वेलित या सहानुभूत नहीं महसूस कर रही। सच कहूँ तो क्षुब्ध हूँ कि उसने जिंदगी के प्रति सतत संघर्षशील लोगों का उपहास उड़ाया है। हाँ, मुझे दुख होता है, लेकिन वह दुख मेहता की मानसिक यंत्रणा और जीवन पर्यंत लग गए लांछन के कलुष का है। हालांकि वह तुम्हारा मित्र है और बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे को कभी बहुत पसंद नहीं कर पाए। शायद तुम ठीक हो, कारण चाहे जो भी रहे हों। अचानक गाड़ी के आने की उद्घोषणा ने दोनों के मध्य संवाद का सिलसिला भंग कर दिया। दोनों ने चौंक कर उस छोर की ओर देखा। दूर एक बिंदु एक धब्बे की शक्ल में परिवर्तित होते होते लोकल के रूप में प्लेटफार्म छूने लगा। वे हड़बड़ा कर उस ओर बढ़ दी जहां महिलाओं का डिब्बा आकर लगता था। पूरे रास्ते उनके बीच ट्रेन की घड़घड़ाहट गूंजती रही। वे पास सटे अपने अपने में गुम सी बैठी रहीं अपरिचित यात्रियों की तरह। बांद्रा पहले पड़ता है। वह उतरने के लिए उठी तो उसने धीरे से नीता के कंधे छू दिए। कल सुबह मेहता के यहाँ चलना है, नीता की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई प्रतीत हुई। दफ्तर में तय कर लेंगे, कहकर वह हड़बड़ाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ दी। मेहता के लिए अकेले बैठकर पत्रिकाएं पढ़ना दूभर हो उठा। रसोई में पहुंचकर वह अंकिता के दक्ष हाथों को फुर्ती से साबुदाने के पापड़ तलते देखने लगा। बस करो, बहुत है, उसने उसे लगातार पापड़ तलते देख बेसब्र हो उठा। तुम्हें तो बहुत पसंद है। पसंद है, लेकिन लो बंद किए देती हूँ, कहकर उसने स्टोव बंद कर दिया। चाय पहले ही केतली में बनी टिकोजी से ढकी हुई थी। दोनों चीजें ट्रे में रखकर वह कमरे में आ गई, पीछे पीछे मेहता भी। प्याला बनाते हुए मेहता की दुर्दशा पर मन उदास हो आया। दाढ़ी बढ़ आई है, बाल शायद पूरे समय उंगलियों से ही संवारे गए लगते हैं। चेहरा मलिन और उदास, आंखों में कुछ देखते हुए ही भी नहीं देखने का स्वभाव। आवाज लगता है कि उसकी अपनी नहीं रह गई, कोई पार्श्व स्वर दे रहा है। शक्कर देख लो, ठीक है? उसने प्याला मेहता की ओर बढ़ा दिया। ठीक ही होगी, एक आध चुस्की भर मेहता अचानक अपने में कहीं डुबकी लगा गया। उसने बिहंस कर छेड़ा, भाई हम अकेले तो रोज ही चाय पीते हैं। सुनकर वह लगभग चौंकते हुए सकुचा आया। कुछ कहा तुमने? कहना चाह रही हूँ, मेहता की आंखों में जिज्ञासा खिंचाई। सुझाव है मेरा, दाढ़ी हरगिज न बनवाना, दो ही पर सूट करती है, तुम पर और मेरे बकरे पर। मेहता उसके परिहास पर अचानक हो करके हंस दिया, लेकिन दूसरे ही पल एक चर्द उदासी ने उसे घेर लिया, मानो वह हंस कर किसी गलत पटरी पर चला गया हो। तुम अनुमान नहीं लगा सकती अंकु, घर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती, सिगरेट के लिए भी नीचे उतरता हूँ। पास पड़ोस की संदेह भरी दृष्टि देह से खाल उकेलती हुई अनुभव होती है कि तुम निर्दयी हो, अमानुष हो, अपनी पत्नी के हत्यारे। उफ, उनकी अफसोस में कटाक्ष की बू आती है, दिमाग साय साय करने लगता है। लगता है घर से बाहर खदेड़ दूं, एक एक को कह दूं मुझे तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, आत्मदया में ढकेलती है मुझे तुम्हारी यह सहानुभूति, और मैं और मरना नहीं चाहता। आज रहा नहीं गया तो एकदम से तुम्हारे पास चला आया। माँ ने आपत्ति भी की कि 2-4 रोज ठहर कर आना जाना करो, 13वीं हो जाए तब, पर मैंने उन्हें यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि कुछ एक खाना पूरियों की खातिर पुलिस और डॉक्टरों के यहाँ भागा दौड़ी चल ही रही है ना। उसने विश्वास भरा, यह अपमान तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मेहता, जो कुछ सामने है वही लोगों के लिए सच है। चाय का कप ट्रे में सरकाते हुए मेहता ने कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर मुंह पे रगड़ा, फिर एकाएक बेचैन सा हो आया। ठीक कह रही हो, कहीं बाहर चलते हैं, बाहर ही खाना खाएंगे, चलकर चहल पहल से जुड़ना चाहता हूँ, कुछ पीना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे घर में वह संभव नहीं, तुम्हारी लक्ष्मण रेखाओं से परिचित हूँ, लक्ष्मण रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं। जानता हूँ, घर से निकलते ही मुख्य सड़क पर आते आते मन किया कि व्हिस्की का एक अद्धा खरीद कर जेब में डालता चलूं, फिर उचित नहीं लगा। कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं। मेहता के प्रस्ताव पर उसे तनिक भी दुविधा नहीं हुई कि इस वक्त घड़ी 7 बजा रही है और बाहर जाने का मतलब होगा कि वह 11 बजे से पहले हरगिज घर नहीं लौट पाएगी। कोई और दिन होता, स्थितियां अलग होती, तो निश्चित ही देर रात तक बाहर रहना और मेहता की पीने की इच्छा को सम्मान देना उसके लिए संभव न हो पाता। बस अभी तैयार हुई, मैं तब तक टैक्सी ले आऊं? फिजूल मीटर चढ़ेगा और कम से कम 5 मिनट मुझे तैयार होने में लगेंगे ही। बस अड्डे पर इस समय आराम से टैक्सी मिल जाएगी। आलमारी से कपड़े निकालकर वह रसोई में बदलने चली गई। अंकिता ने ठीक ही कहा था, बस अड्डे पर कई टैक्सियां खाली खड़ी दिखाई दीं। टैक्सी में बैठने से पहले तय कर लेना जरूरी था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है, टैक्सी वाले को बताना होगा। अंकिता ने सुझाव रखा कि गजेबो चलते हैं। मेहता ने प्रश्न किया, कौन से वाले में? लिंकिंग रोड। चाइनीज खाना हो तो हिल रोड चलना ज़्यादा ठीक रहेगा। ओह, अंकिता ने अनिच्छा से सिर हिलाया। एक तो वह रेस्तरां बेहद छोटा है, इस पर भीड़, गाड़ियों में बैठी हुई मेजें खाली होने की प्रतीक्षा करती रहती हैं, कौन झेलेगा बोरियत। लिंकिंग रोड ही जाना तय हुआ, इटालियन पिज्जा खाना भी। वे टैक्सी में बैठ गए। अंकिता ने ठीक ही सुझाया था, वहां उन्हें बैठने के लिए अपना मनपसंद कोना मिल गया। भीड़ से अलग करता, भीड़ से घिरा रह रहकर पीठ को छूती खुसफुस खिलखिलाहटें, कुएं की छाती से टकराती छलकती एक भरी बाल्टी ऊपर खींच रही है। वाइन ले सकती हो? वह कभी कुछ नहीं लेती, वह जानता है। नहीं, मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लूंगी, जब तक तुम पियोगे उसी से साथ देती रहूंगी। मेहता ने आर्डर दे दिया, जिद्द नहीं की, वह मनोद्वंद में फंस गई। एक आध पैक वाइन ले लेती, चिंदी चिंदी हुई खाली मुट्ठी सी मनस्थिति में वह चाहता तो अपनी पीने की इच्छा को किसी पुरुष मित्र के संग बांट सकता था। बाहर निकलने का मन हुआ तो सीधे उसी के घर आया। बहुत लोग आसपास होते हैं, मगर उस भीड़ में जब किसी को अपने नितांत अंतरंग का साझेदार बनाना होता है, अपना भुक्त बांटना होता है, शायद कोई एक ही होता है उसके पास आकर मेहता ने उसकी मित्रता को विश्वास दिया है। यह भी नहीं कि उसने कभी कुछ चखा नहीं हो। सुधांशु की जिद पर उसने बाकायदा एक रोज बियर पी थी, किंतु सुधांशु के साथ रहते ही उसे इन चीज़ों से भयंकर घृणा हो गई। ऐसा भी नहीं कि वह शुरू से पीने को लेकर दुराग्रही रही हो। बड़े भैया को उसने यदा कदा ले लेते देखा था, लेकिन एक पैग से अधिक नहीं। गजब का संयम है उनमें। उनका कहना था, शराब बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बशर्ते आप उसे कायदे से लें, और यही सुधांशु नहीं कर पाया। दरअसल कुछ दिनों के लिए, बल्कि कहूँ तो महीने भर के लिए यहाँ से बाहर चला जाना चाहता हूँ। गिलास होठों से सटाए मेहता ने उसकी ओर देखा। इससे क्या होगा, उबर सकूँगा। कहीं और घिर गए तो? संभव है, लेकिन हर हालत में इन दोनों ही स्थितियों से अपने भीतर ही लड़ना होगा। हो सकता है क्रूर घटित की भयावह स्मृतियां मुझे अकेला पाकर पूरी शक्ति से अपने जबड़े में दबोच लें, मैं और अधिक असंतुलित हो उस खाई में धंसता चला जाऊं जहां हाथ पैर मारने की काबिल भी न रहूं, मगर भीतर मौजूद जो संघर्ष शक्ति है और जो निश्चित ही है, उसको खोजना है, पाना है, पैना करना है। उसका कोई सिरा किसी तरह हाथ आ गया तो मेरे लिए अपने भीतर उसे उसी अति तक मजबूत कर पाना आसान हो जाएगा, जहां दो विपरीत शक्तियां आपस में भिड़कर अंततः किसी एक का आधिपत्य स्वीकार कर लेती हैं, तभी शायद मैं जी भी पाऊंगा। वह अपलक मेहता को देखती रही। ठीक ही तो कह रहा है, लड़ना उसे स्वयं अपने से है, अपने से लड़ सकेगा तो बाहर की हर लड़ाई छोटी और अर्थवान हो उठेगी। मेहता ने दूसरा पैग मंगवाया। और बताऊं, शायद मेरे दूर जाने से घर का वातावरण भी सहज हो सकेगा। वह समझी नहीं, गहरी प्रश्न भरी दृष्टि उसे टटोला। मेहता किसी उलझन में गोते लगाने लगा, भरे गिलास को आगे पीछे खिसकाते हुए छलांग लगाने से पूर्व की बटोरन। एक गहरा घूंट भरते हुए बोला, तुम अनुमान नहीं लगा सकती कि मैंने बहुत संक्षेप या शायद संकेतों में अपने दाम्पत्य के विषय में तुम्हें कभी बताया था। कुछ जिक्र किया था यही कि पत्नी के संबंध में। महीने भर पहले की बात है, माँ ने भाई का रिश्ता तय कर दिया। चटपट भाई की मंगनी हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है कि मंगनी तय होते ही लड़की लड़के के घर आने जाने लगती है, लड़के के साथ घूमने फिरने की भी उसे छूट होती है। मैंने शायद तुम्हें भाई की मंगनी उत्सव में आने के लिए आमंत्रित भी किया था। हूँ, उसने सहमत से सिर हिलाया। उसे लगा कि मेहता प्रसंगों के स्मरण दिलाने के बहाने शायद अपने भीतर सच्चाई प्रकट करने की रह रहकर हिम्मत संजो रहा है। मंगनी होते ही एकाएक भाई का मन कोकिला की ओर से विरक्त होने लगा। वह बहुत कोशिश करती उसे घेरने की, मगर भाई को शायद यह भान हो चुका था कि उन दोनों के दरमियान चले आ रहे यौन संबंध अब उसके सुखमय भविष्य की राह में रोड़ा हैं। मैंने भी यह महसूस किया कि भाई ने जिस अनिच्छा और दबाव में आकर मंगनी स्वीकार की थी, अब वह अनिच्छा भाव तिरोहित होने लगा है और वह उस लड़की से धीरे धीरे भावनात्मक लगाव जीने लगा है। कोकिला को उसका विमुख होना सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन उस लड़की को खरीदारी के बहाने बुलाकर अपने भाई के यौनाचार की कहानी कह सुनाई और उसे धमकाया कि वह भाई से विवाह भले कर ले, लेकिन उन दोनों के बीच की प्रगाढ़ता किसी हालत में कम न होगी। प्रमाण के लिए उसने अपने नाम लिखे गए भाई के सहजे कुछ प्रेम पत्र रुचिरा को दिखाए। उसे सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि वह समय रहते चेत जाए और मंगनी तोड़ दे। जीवन पर्यंत की भट्टी में होम होने से तो अच्छा है कि वह अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दे। देवर की उससे शादी की कतई इच्छा नहीं है। माँ के दबाव में आकर उसने यह संबंध स्वीकारा है। मेहता फिर ठहरा। गिलास की बची हुई शराब को उसने एक लंबे घूंट में खत्म किया और बैरा से तीसरा पैक तैयार कर लाने को कहा। उससे पूछा भी कि क्या बैरा को खाना लाने को कह दे। उसने इनकार में सिर हिला दिया। ड्रिंक खत्म कर लो पहले अपना। नए पैग से घूंट भर उसने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। लड़की उसकी धमकी से परेशान हो आई। एक रोज उसने हिम्मत कर भाई से सब जानना चाहा। भाई ने लड़की से सच्चाई कबूल ली और यह भी स्वीकारा कि जब से रुचिरा उसके जीवन में आई है वह ऐसी अनैतिक हरकतों से कोसों दूर है। शादी होते ही वह अलग घर ले लेगा। भाई ने एक रोज मौका पाकर पूरे घर के सामने, मैं भी था और इत्तिफाक से उस शाम कोकिला का अपना छोटा भाई भी घर आया हुआ था, झिझकते हुए कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कोकिला ने उसकी मंगेतर को इसी संबंध में एक धमकी भरा पत्र लिखा था, वह भी माँ को पढ़वाया। मैं कोकिला के इस अधम कृत पर पगला उठा। जो कुछ जितना था, जहाँ तक था, उसे वह वहीं तक रखती और भूल जाती तो भी क्षम्य थी, मगर अपनी कामांधता के पीछे वह सारी मान मर्यादा को पीकर नंगी नाच पर उतर आई। मैं उस रोज अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। पहली बार मैंने उस पर हाथ उठाया और उसके 3 दिन बाद ही उसने, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं अब तक न अपने को समझ पा रहा हूँ अंकु, न समझा पा रहा हूँ। मैं इस बात को काफ़ी अरसे से जानता था, तुमसे स्वीकारा भी था कि शायद मैं उसे यौन संतुष्ट नहीं दे पा रहा हूँ और इसी हीन भावना ने मुझे उसके काम संबंधों के प्रति उदार बनाया। लेकिन अब लगता है कि मेरी समझदारी और बराबरी का हक दिए जाने की भावना को उच्च श्रृंखलता के रूप में अपनाकर वह अनजाने अपने ही आग में भस्म हो गई। भाई का भी दोष है, मगर उतना नहीं। भाई को सहवास के लिए प्रवृत्त करने की सदैव उसी की कुचेष्टा रही। कॉलेज खत्म कर नई नई नौकरी पर लगे युवक की यौन उत्सुकता की कल्पना तुम कर सकती हो। मैं ही दोषी हूँ उसे इतनी छूट न देता तो शायद मैं अपने को माफ नहीं कर पा रहा। अचानक मेहता ने गिलास को माथे से इस कदर सटा लिया कि वह आशंका से कांप उठी। कहीं ऐसा न हो कि थोड़ा और दबाव बढ़ते ही गिलास तिड़क जाए और उसकी हथेली लहूलुहान हो उठे। लेकिन इस वक्त न उसे सावधान करना चाहती है न और कुरेदना। जिस अंतर्द्वंद में वह तिल तिल कर मथ रहा है, ग्लानि और तनाव से तार तार हो रहा है, स्वयं लड़कर ही कोई रास्ता खोज पाएगा। खोजना चाहता भी है, बस उसे छू कर मात्र आश्वस्त करना चाहती है कि लड़ाई तो अकेले ही लड़नी होती है। लेकिन ऐसा जरूर होता है जब हम स्वयं अपने साथ होते हैं और कुछ अंधे कंधे आहिस्ता से साथ आ खड़े होते हैं। गिलास पर जकड़ी मेहता की उंगलियों पर वह हौले से अपनी एक हथेली रख देती है।